कई प्रकार से। एक प्रकार से ये कि कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन से सभी गोपियों ने एक बहुत ही अद्भुत व्रत शुरू किया, उसका नाम है कात्यायनी व्रत। भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सभी गोपियों ने व्रत किया। भले सवेरे उठ के जमुना देवी के मार्गदर्शन के अनुसार अंधेरे में उठकर जमुना जी के ठंडे जल में स्नान करके दिन भर उपवास रखे, भगवान का उसने व्रत किया। तो ये महीना भर जो है 30 दिन इस व्रत का महीना है। दूसरा इस महीने का महत्व ऐसा है कि मासाणाम मार्गशीर्षोहम, यानी सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसलिए मार्गशीर्ष भी बहुत पवित्र महीना है क्योंकि वो स्वयं कृष्ण हैं। और आप लोग आगे आके बैठो, बैठो ना, बहुत पीछे पीछे हो गए, आगे आओ थोड़ा सा, कम कम इन फ्रंट। और इस महीने में भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। कौन से दिन में सुनाई? हाँ, यस, किस दिन भगवान ने गीता सुनाई? एकादशी के दिन। कहाँ सुनाई? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में पांडवों का और कौरवों का युद्ध होने वाला था। पांडवों को कम से कम 5 गांव मिले, इसलिए भगवान ने विनती किया उनको जाके। भगवान होते हुए भी जाकर उन्होंने पांडवों के लिए, अपने भक्तों के लिए दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे, जो पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट बनने के योग्य थे, उनके लिए केवल 5 गांव मांगे, एक भाई के लिए 1 गांव। वो भी मना कर दिया गया उसको। तो फिर युद्ध होना निश्चित हो गया, युद्ध होना ही है, युद्ध होना तय होगा कुरुक्षेत्र के भूमि पर। अभी कुरुक्षेत्र आज के तारीख में युद्ध की भूमि के नाम से जानते हैं, लेकिन युद्ध होने के पहले वो भूमि जो थी वो धर्म क्षेत्र कहा गया उसको। मतलब जैसे हमारा वृंदावन है, जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता युयुत्सवा, ये गीता की शुरुआत है। धर्म क्षेत्र का मतलब है कि जहाँ पर धर्म का कार्य होता है, धर्म के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा क्षेत्र है वो। उसके बाद भी वो युद्ध की भूमि बनी। और आज हम जानते हैं कि अरे इसका घर में कुरुक्षेत्र हो गया, उसका मतलब घर में युद्ध हो गया, लेकिन कुरुक्षेत्र सबसे पहले धर्म क्षेत्र था, बाद में उस धर्म क्षेत्र में युद्ध होने का निश्चय हुआ। तो ये जो भगवद्गीता का ज्ञान है, हाँ, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, सब लोगों को, कि भगवद्गीता का ज्ञान मनुष्यों के लिए है, कुत्ता बिल्ली पंछियों के लिए नहीं है। जो लोगों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, 84 लक्ष योनि में भटकने के बाद में, कष्ट भोगने के बाद में, दुख भोगने के बाद में, एक चांस मिलता है जीव को मनुष्य बनने का, और वो चांस मिलने के बाद भगवान उसको अपने घर पे वापस बुलाना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने केवल इसी योनि में, मतलब जो मनुष्य है, केवल उनके लिए ही ज्ञान दिया है। और कोई कुत्ता बिल्ली प्रवचन में नहीं आते, याद रखना, कोई पंछी, कोई कुत्ता बिल्ली सांप मच्छर, उनके लिए प्रवचन नहीं होता है, प्रवचन के लिए आप और हमारे लिए होता है। और इसी प्रवचन में क्या समझना है वो भगवान ने सार रूप में गीता में दिया है। और आप बोलेंगे अरे तो गीता तो 5000 साल पहले बताई गई थी, आज तो वर्ल्ड बदली हो गया है, बहुत बहुत चेंज हो गया वर्ल्ड में, तो आज के लिए वो वैसा ही है क्या, वो आज भी वो लागू है क्या? भगवद गीता ये आत्मा का ज्ञान है, समय का ज्ञान नहीं है, मतलब गर्मी सर्दी का ज्ञान नहीं है। भगवद गीता आत्मा का ज्ञान है, और हम 5000 साल पहले भी आत्मा थे और आज भी आत्मा है, और आज के 5000 साल बाद भी आत्मा ही रहेंगे, हमारे अंदर को चेंज नहीं आएगा, शरीर बदले होगा, आज जवान शरीर है, कल बुढ़ा हो जाएगा, हर गाल बाल काले हैं, कल सफेद हो जाएंगे, समय बदलेगा, लेकिन गीता का ज्ञान और गीता का ज्ञान लागू होना वो बदलेगा नहीं। तो भगवान ने अर्जुन के निमित्त से हम सबके लिए यह ज्ञान दिया। और अर्जुन कोई सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं था, ये भी समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन तुम्हारे हमारे जैसा गृहस्थ था, हाँ वो पुरुष था, हम लोग कोई स्त्री है कोई पुरुष है, लेकिन वो गृहस्थी था, उसको भी परिवार था, उसको भी पति पत्नी बच्चे सब कुछ थे, सारी जिम्मेदारियां थी, हाँ सब विवंचनाएं उसको भी थी, भले वो राजपुत्र था लेकिन फिर भी उसको अपनी अपनी समस्याएं थी। तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते अरे भगवत गीता तो सन्यासी लोग के लिए होता है, हम थोड़े सन्यासी हैं जो घर छोड़ के जा चुके हैं, दंडा लेकर भिक्षा मांगते हैं, भगवान का धाम का काम करते हैं, उनके लिए वो हमारे थोड़ी, हम तो गृहस्थी है बाल बच्चे वाले, हमारे यहाँ पर कहाँ पर टाइम है उसका। खास करके देखना है तो ये एक गृहस्थ को बताया गया है, और कब बताया गया है, हाँ शाम को काम करने के बाद में, वो उसने साल भर का पीएल लिया था 21 दिन का, बहुत टाइम था उसके पास, है ना, छुट्टी लिया था पीएल अपना 21 डेज का, फिर वो गांव गया था, उधर गांव में भगवान ने बोला टाइम है क्या तेरे पास, कुछ बताना है तेरे को, हाँ हाँ अभी तो छुट्टी पर हूँ बताओ, तो फिर आराम से सुनाया। ऐसा भी नहीं है, आज हम किसी को बोलते हैं ना, हम लोग भी बोलते हैं अरे गीता ले लो, ये गीता ये महीने में बताई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो पहले बोलते टाइम नहीं है, दूसरा बोलते हैं हमारे पास है, और आप बोलेंगे कौन सी भाषा में है, तो वो देखेगा ऐसा, इनके पास इंग्लिश है, गुजराती है, मराठी है, हिंदी है, तो बोलेगा उर्दू में है क्या, उर्दू में, गुजराती में है क्या, गुजराती में, जो नहीं है वो पूछेगा, फिर बोलेगा 130 रुपया, अरे ये बहुत महंगा है ऐसे 50 बहाने बनाएगा, हाँ क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। तो समझने वाली बात है कि अर्जुन को भगवत गीता किस समय बताई गई थी, जब वो अपने जीवन के सबसे बड़ी समस्या में था तब उसको बताया गया, बहुत टेंशन में था उस टाइम पे बताया गया, आराम के समय पे नहीं बताया गया, जब उसके लाइफ में इमरजेंसी आई थी, बहुत बड़ा भयंकर प्रश्न उसके सामने आया था, उस समय उसको बताया गया था, मतलब सबसे ज्यादा जरूरत कब थी उसको, तब वो सुनाया गया था, उसको मोह हो गया था, भ्रम हो गया था, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा था उसको, उस समय ज्ञान दिया गया उसको। और आज तक जितने भी विद्वान इस दुनिया में हुए हैं वो सब लोग जानते हैं कि हर समस्या का समाधान भगवद गीता में है। आपको क्या समस्या है, आप बोलेंगे मेरी बीवी झगड़ा करती है मेरे साथ में, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते क्या उसके अंदर उसका सोल्यूशन दिया गया उसके अंदर, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है उसका भी आंसर दिया गया उसके अंदर, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब का आंसर उसके अंदर दिया है, लेकिन इस रूप से नहीं दिया है। प्रश्न क्रमांक 112, बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करता है तो क्या करना चाहिए, उसका उत्तर ऐसा नहीं दिया है उसको, आपको पूरा समझना पड़ेगा फिर आपको सभी प्रश्न के उत्तर मिलेंगे उसके अंदर। और बाय द वे जीवन की समस्या ये नहीं है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जीवन का मूल समस्या ये नहीं कि पत्नी झगड़ा करती है, जीवन का समस्या एक्चुअली ये नहीं है कि पैसा ही नहीं है क्या करने का, जीवन की समस्या ये है कि हम लोग मरने वाले हैं एक दिन, पैसा होने पर भी मरने वाले हैं, पैसा नहीं होने पर भी मरने वाले हैं, सुंदर होने पर भी मरने वाले हैं और एकदम कुरूप दिखने पर भी मरने वाले हैं, ये मेन समस्या है। प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो भी मरेगा और भिखारी बनेगा तो भी मरेगा, ये समस्या का उत्तर उसके अंदर दिया है। अगर आपको वो समस्या समझेगी कि जीवन में समस्या है, ये समस्या बड़ी है, तो आपको उसके उत्तर में इंटरेस्ट रहेगा, आपको लगेगा कितने देखा है मृत्यु वृत्यु, तो बहुत आगे की बात है, अभी पहला देखो बीवी झगड़ा कर रही है उसका क्या करना, देखो पहला ऐसा हम सोचेंगे तो वो मूर्खता का लक्षण है। सब लोग दुनिया में दुख भोग रहे क्यों, क्योंकि हमने जन्म लिया है, जन्म लिया है इसलिए बुढ़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, समस्या है, तकलीफ है, कष्ट है और मृत्यु प्राप्त होने वाला है। आगे आकर बैठो प्रभु जी, इधर आके बैठो। तो ये भगवद गीता बहुत विशेष ज्ञान है, उसका इतिहास क्या है कि पांडवों पर अन्याय किया गया था और फिर युद्ध का निश्चित हो गया, और युद्ध के भूमि पर जब भी वो आया तब देखा कि सारे मामा काका चाचा पिता महा ग्रैंड फादर सब लोग खड़े उधर युद्ध करने के लिए, युद्ध को जीतने की इच्छा से, प्रतिपक्ष को मारने की इच्छा से, राज्य ग्रहण करने के लिए, स्वार्थ के लिए सब लोग खड़े हैं। तो बोलते मुझे युद्ध नहीं करना है, तो सब मेरे चाचा मामा मेरे गुरु सब लोग खड़े इधर, मैं कैसे मारूंगा इनको, जिनको मैं प्रणाम करता हूं उन पर बाण कैसे चलाऊं, बाद में ये लोग मरेंगे तो इनकी पत्नी विधवा हो जाएगी, फिर विधवा लोगों का लोग घर दुरुपयोग करेंगे, फिर गलत संतान पैदा होगी, समाज भ्रष्ट हो जाएगा, समाज की रीति रिवाज नष्ट हो जाएगा, कोई तर्पण करने को बचेगा ही नहीं, फिर श्राद्ध कौन करेगा, ऐसे बहुत सारे कारण देता है वो। और आखिर में सारे कारण देने के बाद भी वो सोचता है कि फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, करूं कि नहीं करूं, अभी तुम बताओ। तब तक वो दोस्त थे उसके, दोस्त के रूप में वो युद्ध में भाग ले रहे थे। तब बोलते हैं कि अभी मैं दोस्त नहीं हूं आपका, अब मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो, अब मुझे गुरु बनकर मार्गदर्शन कीजिए। और तब भगवान ने बोलना शुरू किया दूसरे अध्याय से, और फिर वो सब समझाते हुए कि तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, कर्म क्या होता है, बुरे कर्म क्या होते हैं, अच्छे कर्म क्या होते हैं, हमारा कर्तव्य क्या होता है, भक्ति क्या होती है, संन्यास क्या होता है, विरक्ति क्या होती है, जीवन का उद्देश्य क्या है, कर्तव्य करने में आदमी को चुकना कैसे नहीं चाहिए, ये सब कुछ समझा दिया उनको। भक्ति योग समझा दिया, संन्यास समझा दिया, विरक्ति समझा दिया, और आखिर में ये भी बताया कि तुमको मैंने सब मार्ग समझा दिए हैं, ये सब मार्ग में भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती नहीं है, जो तुमको करना है वो तुम कर सकते हो। तो क्या कहते हैं वो, नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। अब मेरा सारा भ्रम जो था मन में, इतने दुविधा क्या करूं क्या नहीं करूं, वो सब नष्ट हो गई है। अब मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। अभी अभी मैं जो केवल आप बोलूंगा वही करूंगा बस। एक तरह से मैं सुबह ही आज बातचीत कर रहा था एक डॉक्टर के साथ, वो कहते थे, कह रहे थे कि क्या भगवान के लिए हमको रिस्क लेना चाहिए क्या, भगवान की सेवा के लिए रिस्क लेना चाहिए क्या। मैंने कहा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आज तक जिसने भगवान के लिए रिस्क लिया है वो कभी हारा नहीं जिंदगी में। अर्जुन ने भी रिस्क लिया था, क्या रिस्क लिया था मालूम है आपको, एक दिन भगवान कृष्ण सो रहे थे, निद्रा में थे, युद्ध ठहर चुका था कि युद्ध होना है, तो भगवान का पक्ष मांगने के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों आते हैं उधर। पैर के पास आके अर्जुन बैठता है और सर के पास आके बैठता है दुर्योधन। तो भगवान की जमीन खुलती है तो पहले अर्जुन को देखते हो, फिर ऐसा करके बताता है मैं भी हूं यहां पर। बोले क्या चाहते हो, बोला युद्ध का अभी ठहर चुका है, युद्ध होने वाला है, तो आप किसके पक्ष में युद्ध करेंगे, तो हम लोग वो तय करने वाले हैं, इसलिए आए दोनों। तो भगवान कहते देखो ऐसा है, मैं एक जगह रहूंगा, मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई रथी बनकर नहीं आऊंगा, घोड़े पर नहीं बैठूंगा, तलवार धनुष चक्र कुछ नहीं लेके आऊंगा, ऐसा ही निहत्ता बन के आऊंगा। और एक तरफ मेरी सेना है, एक अक्षौहिणी मतलब कई लाखों कई कोटि है इसलिए, हाँ उसके अंदर उनको ऐसा वरदान था उस सेना को, उसका नाम था नारायणी सेना, उनको ऐसा वरदान था कि उसमें से कोई भी व्यक्ति कभी मरेगा नहीं युद्ध में। मतलब कितनी अच्छी बात है, सब लोग मरेंगे वो नहीं मरेंगे, ऐसी सेना है। एक तरफ आपको दो चॉइस है, मुझे ले लो बिना हत्यारी, या तो इनको ले लो पूरी हथियार के साथ, और वरदान भी है उनको मरेंगे नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चाहिए, तो भगवान कहते अरे मुझे लेकर क्या करोगे, मैं तो कुछ भी करने वाला नहीं हूं युद्ध में। नहीं नहीं, आप जैसे भी हो, हथियार के बिना हो, शस्त्र के बिना हो, कैसे भी हो, रथ के बिना हो, आप मेरे सारथी बनो, मेरे ड्राइवर बनो, आप मुझे गाइड करो। तो दुर्योधन क्या बोलते हैं, हाँ छोटा भाई है ना, उसकी इच्छा पहले पूरी होनी चाहिए। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, ले लो तुमको जो चाहिए वो ले लो, बचा हो मैं ले लूंगा। मन में सोच रहा है कितना मूर्ख व्यक्ति है, देखो इसको बिल्कुल अक्कल नहीं है, ये तो ग्वाला गाय चराने वाला आदमी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन चक्र लेके आएगा तो शक्तिशाली, चक्र के बिना आएगा तो फायदा क्या उसका, ऐसा वो सोच रहा है। और वो सेना लेके चला जाता है और भगवान को अकेले लेकर ये चले जाते हैं। वो कहते हैं कि आप मुझे शस्त्र की कोई जरूरत नहीं, आप मेरे गाइड बनो बस खाली। कितना बड़ा रिस्क लिया, मतलब आम दृष्टि से देखा जाए तो एक मूर्ख था व्यक्ति, वो एक व्यक्ति बिना, एक बहुत बड़ा योद्धा है लेकिन शस्त्र नहीं उसके पास, उसको लिया उसने, रिस्क लिया कि नहीं उसने बहुत। लेकिन एंड में क्या हुआ, वो नारायणी सेना का एक भी योद्धा नहीं मरा, लेकिन सारे कौरव मर गए, नारायणी सेना वैसे रह गई। उसने युद्ध किया, उसके पांडवों के खिलाफ युद्ध किया उन्होंने, फिर भी वो नहीं मरे, पांडव जीत गए, वो हार गए, उनका पक्ष हार गया, लेकिन वो नहीं मरे, लेकिन कौरव सब लोग मर गए। सब गणित करते बैठे, वो हमारा कितना कैलकुलेशन है, हमारा कितना नंबर है, उनका कितना कम है, उसमें पांच बड़े योद्धा, हमारे पास 100 बड़े योद्धा है, ऊपर से भीष्मदेव भी है, द्रोण भी है, कर्ण भी है, शकुनी भी है, सब पूरा नंबर लगा के बोला हमारा पलड़ा बहुत भारी है इसके अंदर, ऊपर से जो सबसे बड़ा भारी योद्धा है वो शस्त्र के बिना वहां खड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को। ऐसा सब कुछ होने पर भी कौन जीता? पांडव जीते। तो रिस्क लिया उसने, लेकिन जब हम भगवान के लिए रिस्क लेते हैं तो भगवान भी उसका फल देते हैं। कोई भी व्यक्ति रिस्क लेता है तो जानता है कि ये तो फटका खाऊंगा या तो बहुत थोड़ा कमाऊंगा, लेकिन भगवान के लिए जो रिस्क लेता है, जो चैलेंज देता है, चुनौती लेता है भगवान के लिए, वो हमेशा विजय होता है। चाहे गणित बताता होगा, गणित तो लगता है कि यही जीतने वाले हैं, गणित बता रहे हैं आपको, लेकिन गणित फेल हो जाता है जब भगवान के लिए हम रिस्क लेते हैं। तो ये हमको सीखना है भगवद्गीता से। भगवद्गीता में बहुत बड़ा ज्ञान है। अरे इस दुनिया में जितने भी धर्म है ना, क्रिश्चियन धर्म है, मुसलमान है, और बुद्धिस्ट है, और जू है, और जुड़ा है वो पारसी है, ज़ोरास्ट्रियन है, कितने सारे धर्म है दुनिया में। और एक एक धर्म के भी अलग अलग विभाग है, 50 विभाग है हर एक धर्म के अंदर। लेकिन सारे धर्म के जितने विद्वान हैं वो सब भगवद्गीता को मानते हैं। बाकी तुम्हारा पुराण वगैरह नहीं मानते होंगे इतना, लेकिन भगवद्गीता ऐसा एक साइंस है जो दुनिया के सब धर्म के सब विद्वान, जितने भी बड़े से बड़े विद्वान हैं और धर्म को पालने वाले हैं, वो भगवद्गीता को बोलते हैं कि हमारा नहीं है लेकिन है, परफेक्ट साइंस है, इसकी मान्यता है उसको। क्योंकि स्वयं भगवान ने अपने श्रेष्ठ भक्त को, जब वो सबसे अधिक जरूरत में था, युद्ध भूमि पर था, दुविधा में था, तब बताया हुआ साइंस है वो। इतना टाइम नहीं कि वो बताते जाए चार दिन तक, इतना भी टाइम नहीं था, टाइम बहुत लिमिटेड था। उतने टाइम में उनको सही जवाब देना था, सही गाइड करना था उनको। वो बैठ गया था, बोलता मेरे को युद्ध नहीं करना है, मैं तो मर जाऊंगा, ये तो देखूंगा तो मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। उसका धनुष गिर गया, बाण गिर गया, हाथ पांव जलने लगे, ऐसा एकदम बेकार हो गया वो पूरा कंप्लीटली, बैठ ही गया वो। उधर सब खुश हो गए कौरव लोग, अच्छा हो गया, मेन चैंपियन बैठ गया तो आगे का काम आसान हो गया। ऐसे टाइम पे जिसमें तुम निरुत्साह हो गए हो, निराश हो गए हो, तुमको रास्ता नहीं दिख रहा है, तुम्हारी हिम्मत हार गए हो, उत्साह खत्म हो गया है, ऐसा होता है ना लाइफ में हमारे, बहुत बार होता है ना, क्या करें समझ में नहीं आता है, सब जगह संकट है चारों तरफ से। कई बार ऐसे दुनिया में संकट आते हैं हमारे जीवन में, हाँ, बड़े से बड़े आदमी को भी आते हैं, छोटे छोटे आदमी को आते हैं, क्या करेगा समझ में नहीं आता है, क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, निराश होता आदमी, कोई रास्ता दिखता नहीं, सब अंधकार ही अंधकार। ऐसे बहुत ही कठिन समय पर भगवान ने कम के कम समय में उनको परफेक्ट नॉलेज दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? वो निराश था, वापस खड़ा हो गया, वो जो बैठ गया था वो खड़ा हो गया, शस्त्र उठा लिया उसने वापस, बोला अब मैं युद्ध करूंगा, जो पहले बोला था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अभी मैं जंगल जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा, मैं युद्ध नहीं करता, मेरे को युद्ध नहीं करना है। ऐसे बोलने वाला व्यक्ति बोला भगवान क्या करना है, बोलो अभी तुम्हारी जो आज्ञा है, करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। कितना बड़ा फर्क पड़ा, इतना बड़ा जो अमूलाग्र बदल है वो भगवान ने इतना श्लोक बोल के, ऐसे कहते हैं कि भगवान ने पौने घंटे में उनको 700 श्लोक सुनाए, हमको पौने घंटे में एक श्लोक भी समझ में नहीं आता है गीता का, लेकिन अर्जुन इतना बुद्धिमान था कि ऐसे टेंशन के समय पे इतना निराश हो गया था वो, ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छे मूड में था, बहुत उसका नींद वींद पूरा हो गया था, पूरा एकदम दिमाग एकदम तैयार था, पेट भी खाना पीना खा के आया था, कसरत वसरत करके पूरा चंगा उत्साह ही आया था, ऐसा नहीं था, निराश था वो। ऐसे टाइम पे कितनी कुशलता से भगवान ने बोला होगा उसको, सोचो आप, कुछ टाइम तो उसको खड़ा होने के लिए लगा होगा ना सुनाने के लिए, फिर प्रश्न पूछे उसने, उसका जवाब देने में लगे बहुत टाइम उसको, लेकिन बहुत सुंदरता से उसको जो चाहिए था वो ज्ञान दिया, जो आज भी हमारे लिए भी लागू है। जब भी हमारे जीवन में कभी संकट आता है, कुछ निराश होते हैं, हम लगता है कि मरना चाहिए, आत्महत्या करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए जिंदगी में, वो टाइम पे ये नॉलेज आपको सहायता करेगा, इतनी शक्ति है उसके अंदर, क्योंकि भगवान ने अपने श्री मुख से स्वयं बोला हुआ ज्ञान है वो, किसी से बुलवाया नहीं है, किसी से नोट्स देके उसको रिपीट नहीं करवाया है, खुद बोला है, खुद अपने मुख से, एक एक वाणी में एक एक शब्द जो है वो भगवान का शब्द है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने अपने श्री मुख से कहा हुआ ज्ञान है ये, और हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा उसको? वो आप में से कोई क्रिश्चियन नहीं तो बोलेंगे हमारा तो धर्म नहीं है, ठीक है आप लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो हिंदू है, जो हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म में जन्म हुआ है, वो नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा इसको? हमारे मंदिर में दो डिवोटी अभी ऐसे हैं, एक कुवैत से है और एक पाकिस्तान से है, दोनों मुसलमान हैं, और दोनों भगवद गीता के पंडित हैं, वो मंदिर में ब्रह्मचारी बन के रह रहे हैं। बोलो तो हमारा मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को गीता दो, को उनको भगवान का कृष्ण का भक्त बनाओ, ये हमारा पर्पज नहीं है। हमारा खाली कहने का इतना मतलब है, अगर वो तुम्हारा शास्त्र है, तुम्हारे धर्म का ग्रंथ है, तो तुमको वो पढ़ना चाहिए, कम से कम स्वाभिमान के लिए पढ़ना चाहिए। अगर मैंने मेरा नाम हिंदू धर्म का, मेरा जाति का नाम हिंदू धर्म का है, तो एक स्वाभिमान के लिए क्यों ना हो, लेकिन पढ़ना चाहिए उसको, क्योंकि मेरा है, कम से कम मालूम होना चाहिए क्या लिखा है उसके अंदर, क्या बोल रहे मेरे भगवान, क्या चाहते हैं मुझसे वो। और अगर दुनिया उसको सलाम करती है, दुनिया के विद्वान सलाम करते हैं और मैं जानता तक नहीं, कितनी नामुश्की की बात है, ये सोच के पढ़ना चाहिए उसको। और दुनिया के पंडित लोग उसको सलाम करते हैं उस ग्रंथ को, और हमारे हर कोर्ट के अंदर हाथ पकड़ के उसको बोलते हैं हम लोग, जो भी कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। खाली संपर्क कहां पर आता है, कोर्ट में। वो इतना महान ग्रंथ जो है, वो हमारा ग्रंथ है, उसको मुझे जानना चाहिए। अरे अरे पढ़ा लिखा नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाने के लिए बहुत लोग बैठे हुए, आपको समझना है क्या पहले। अरे मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो समझता ही नहीं हूं, आपको समझा सकते हैं। हमारे में से कोई संस्कृत का पंडित नहीं है, ना हमने 10वीं तक संस्कृत का पढ़ाई किया है, मालूम है आपको। मैं स्कूल में संस्कृत के लिए बहुत फाइट किया था, लेकिन मैं SSC पास होकर स्कूल छोड़ के चला गया, फिर स्कूल में संस्कृत आया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, गीता समझने में कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज मैं जब श्लोक बोलता हूं, लोगों को लगता है कि आप संस्कृत का अभ्यास किया, कैसा लोगों को लगता है, इतना हमारे प्रभुपाद जी ने उसको आसान बना के समझाया है। और आप बोलेंगे हमको अंग्रेजी नहीं आती है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है, गुजराती में भी है, अरबी में भी है, अरबी में मालूम है कि आपको उल्टी पढ़ने वाली भाषा है ना वो, उसमें भी गीता है, उर्दू में भी है, सिंधी में है, पारसी में है, चाइनीज में है, जापानीज में है, पुर्तगीज में है, जर्मन में है, फ्रांस में है, 85 लैंग्वेज में है दुनिया में, बताओ आप। जो भाषा आपने सुनी भी नहीं होगी वो भाषा में भी है, स्लोवेनियन, जेकोस्लोवाकियन, जोर्डेनियन, आपने सुना भी नहीं होगा, ऐसी भाषा में भी भगवद गीता का अनुवाद किया गया है। तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि हमको तो भाषा आती नहीं है, उसका पूरा वर्ड टू वर्ड मीनिंग करके समझाया है। आपको इच्छा होगी तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको इच्छा होनी चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए कि अगर मुझे नहीं आई तो मेरे सगे वालों को कैसे आएगी, मेरे बच्चों को कैसे मालूम पड़ेगा क्या है इसके अंदर। पापा ये भगवद गीता क्या होती है, नहीं मालूम बेटा। पापा शाहरुख खान कौन है, धड़ाधड़ बताएगा पूरा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, बोलेगा वो जो पापा को मालूम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पापा को जो मालूम नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा उसको लगेगा कि नहीं। पापा बोलेगा कि वो फिल्म स्टार के बारे में मत पूछो, मैं आपको भगवद गीता के बारे में बताता हूँ, तो बच्चे को मालूम पड़ेगा कि ये भगवद गीता इंपॉर्टेंट है, पापा उसको जोर दे रहे हैं उसके ऊपर, है कि नहीं। आपका बच्चा आपको पूछेगा पापा ये किताब किसकी है, तो अरे मालूम नहीं मुझे, ये कौन है ये रथ पे खड़ा है शंख बजा रहा है, मालूम नहीं मुझे क्या, आई डोंट नो। और फिल्म मैगजीन उठाएगा बोलेगा हाँ ये फिल्म का मैगजीन है, सब बताएगा उसके बारे में। तो हम बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं, हमारे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन जब हम लोग समझेंगे उसको, उसका महत्व समझेंगे, तो हमारे बच्चों को उसी तरह से बताएंगे, तो वो भी उसी तरह से उसको लेंगे, फिर वो स्कूल जाके फिर 9वें अध्याय पर स्पर्धा में भाग लेगा, 12वें अध्याय को पठन करने में भाग लेगा स्पर्धा में, जैसे हम सब लोग ने लिया बचपन में। ये हमारी संस्कृति है, दिस इज आवर इम्पोर्टेंट कल्चर, इसको हम लोग खो नहीं सकते हैं। आप बोलेंगे हम पढ़े लिखे नहीं, हमको क्या आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो श्लोक पाठ नहीं करने हैं पूरे, आपको उसका अर्थ समझना है बस, जीवन में उसको उतारना है, दैट्स ऑल। हम भी गीता के पंडित नहीं है, लेकिन गीता में अर्थ क्या लेके हमको मालूम है, पढ़ाई किया है हम लोग ने उसका, उस तरह से आपको भी करना है, जितना भी समझ में आए नहीं आए उसको पढ़ना चाहिए जरूर। भगवद गीता बायहार्ट हो गया मतलब वो पंडित हुआ, ऐसा नहीं है। आपको भगवद गीता बायहार्ट नहीं भी हुआ, आपने उसका एक श्लोक जीवन में उतारा तो भी काफी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो वही है। अर्जुन ने खाली गीता का श्लोक बोला, अर्जुन बोला ओके अभी तुमको मैंने सुनाया पौना घंटा 700 श्लोक, अभी रटके दिखाओ पूरा मुझे कितना समझ में आया तुझे, कोई रिविजन नहीं लिया उसका, उसने सीधा उसको जीवन में उतारा स्ट्रेट, अगले 18 दिन में जो भी सुनाया था उसको जीवन में उतारा, कोई श्लोक गलत या सही बोल के दिखाया नहीं उसको युद्ध के अंदर, ए वो 4वें अध्याय में मैंने तुम क्या बताया था बताओ, ऐसा नहीं पूछा उनको कभी। उसका सार क्या था, करिष्ये वचनम तव, जो तुम्हारी इच्छा है वैसे मैं करूंगा, और पूरा 18 दिन में उसको निभाया उन्होंने उस वचन को, खुद को कुछ कुछ बात जमी नहीं उसको, भगवान ने कहा करो तो किया। इसको कहते हैं भक्त, हर बार हर चीज दिमाग के लेवल पे समझेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। जब भगवान जैसे लोग या गुरु बताते हैं तो सब कुछ समझ में आएगा, ऐसे नहीं है, हमको करते रहना चाहिए बस। ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान है भगवद गीता। और कहा गया कि जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, जितने उपनिषद है, वो सबका वो सार है। जैसे इतनी बड़ी गाय है, उसका सार क्या है? दूध। उसके अंदर हड्डी भी है, मसल भी है, खून भी है, बहुत सारा चीज है उसके अंदर, लेकिन असली असली उसका सार क्या है? वो दूध के रूप में आपको प्राप्त होता है। तो गाय को वेद रूपी माना गया है, और जो दूध जो निकाल रहा है वो दूध को भगवद गीता माना गया है। तो दूध निकालने वाले कृष्ण है गाय से, और दूध पीने वाला बछड़ा जो है वो अर्जुन है। भगवान ने दूध निकाला और अर्जुन को पिलाया, और अर्जुन ने उस प्रकार से जीवन के कार्य किया और सफल हो गया वो। यही शास्त्र कई लोगों ने आके कई लोगों को समझाया है हमारे शास्त्र में, हमारे इतिहास में। तो हम लोगों आप लोगों को विनती करते हैं कि साल में एक बार हम लोग ये भगवद गीता के बारे में दोबारा बोलते रहते हैं, क्योंकि अगर ये हम नहीं समझेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और ये समझना बड़ा आसान है, इसको और आसान करके हमारे प्रभुपाद जी ने लिखा है। कैसे लिखा है? 700 श्लोक है, 18 अध्याय है, एक एक अध्याय में कुछ कुछ श्लोक है, हर एक श्लोक का वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया उन्होंने, फिर उसका एक लाइन में अनुवाद किया है, फिर एक लाइन अनुवाद के बाद में हर एक श्लोक का स्पष्टीकरण दिया है, समझा दिया है उसको कैसे क्या क्या मतलब है उसका, क्या चाहते हैं आप समझना उसके, वो पूरा समझाया। इस प्रकार से पूरी गीता समझाइए, तो दिन में एक भी श्लोक पढ़ेंगे ना आप, तो भी आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा क्या कहना है उसके अंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अद्भुत ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया है। और हम सबको वो समझ में आया नहीं आया, जितना समझ में आया उतना भी काफी है। ऐसे कहते हैं कि हमको 700 श्लोक में से एक श्लोक का एक चौथा हिस्सा भी समझ में आया ना, तो भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जप करते हैं, इसलिए हम लोग चार नियम पालन करते हैं, मांस नहीं खाते हैं, नशा नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, और भगवान के नाम का जप करते हैं। जब हृदय शुद्ध होता है तो ये ज्ञान बहुत आसानी से समझ में आता है। जिसकी बुद्धि जो है शुद्ध हो गई है आचरण से और स्वभाव से, आचरण स्वच्छ हो गई है उसका, उसकी स्वच्छ बुद्धि से ये ज्ञान बहुत जल्दी समझ में आता है। जो मांसाहार करता है, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है, नशा करता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, उस भ्रष्ट बुद्धि से उसको ये समझ में नहीं आता है। इसलिए हम लोग ये चार नियम पालन करते हैं। और भगवद गीता ऐसा सागर है कि आप अगर 2010 में उसको पढ़ेंगे और 10 साल उसके आगे साधना करेंगे, जप करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, और 2020 में उसको दोबारा पढ़ेंगे, तब आपको बहुत सारा ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उसमें से, उसी किताब से, क्योंकि आपकी स्थिति और अच्छी हो गई होगी, तो उसकी इतनी अच्छी अवस्था में आपको और समझ में आएगा उसके अंदर कितना गहराई है। आप जितने गहरे जाओगे उतना आपको और नॉलेज मिलेगा, और समुद्र कैसा होता है, समुद्र जितना अंदर जाओगे उतना और कुछ कुछ मिलेगा आपको उसके अंदर, और कोई मोती मिलेगा, कोई गहना मिलेगा, कुछ और कुछ मिलेगा, अद्भुत वस्तु मिलेगी आपको। और गहराई कितनी है उसकी, पता नहीं कितना गहरा है वो, गहरा जाओ जितना गहरा ही है, उसका बॉटम मिलता ही नहीं ऐसा आपको लगेगा। तो ये हमारे जीवन की समस्या है, कब कोड ब्लू होगा पता नहीं, उसके पहले ये समझना है। और सबका जीवन में कोड ब्लू होना है, उसके बाद कोड ब्लैक भी होना है, कोई बचने वाला नहीं। और जब ये होगा तब ये नॉलेज नहीं होगा, भगवान की याद नहीं होगी, तो दोबारा आएंगे हम लोग कुत्ता और बिल्ली बनने के लिए। इसलिए अभी जब हम इंसान बने हुए हैं, इंसान बनने के बाद सत्संग हमको प्राप्त है, मौका है, तो प्राप्त करना चाहिए। अगर मौका है, सब कुछ सही है, लेकिन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो उसका परिणाम होगा और वो भुगतना पड़ेगा, उसमें से कोई मुक्त नहीं है इसके अंदर। आपको पटे या न पटे, समझे या न समझे, सत्य बदलता नहीं कभी भी, सत्य वही रहता है। इसलिए हमारी आपको विनती है, आपको समझ में नहीं आया तो चलेगा, लेकिन कोशिश जरूर करो आप। साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण था जो भगवान के मंदिर में बैठकर गीता पढ़ रहा था, वो अंगूठा छापता, वो कभी स्कूल नहीं गया था, और चैतन्य महाप्रभु उसको मिलने आए, वो देख रहा तो क्या वो रो रहा है गीता पकड़ के हाथ में। तो महाप्रभु चैतन्य ने उनको पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? लोग उनको देखे हंस रहे हैं, कुछ लोग पंडित लोग जा रहे हैं इधर, वो देखे हंसे, क्या अनपढ़ आदमी गीता खोल के बैठा है, वो तो उल्टी गीता पकड़ के खड़ा है, उसको पता भी नहीं कि उल्टी की सही है और रो रहा है फिर भी। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ उसके चित्रपट पे, क्या देख रहा हूँ, ये चित्रपट पे देख रहा हूँ कि साक्षात भगवान सृष्टि के निर्माण करता, नियंत्रण करता, पालन करता, सबके पिता, परम पिता भगवान जो है वो अपने भक्त के सारथी बने हुए हैं। भक्त सारथी का मतलब क्या होता है? इधर जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, सीधे जाओ, नीचे करो, ऊपर करो, रुको अभी, आज्ञा ड्राइवर के साथ, ड्राइवर, ए ड्राइवर रुको, साइड में रुको गाड़ी, अभी राइट में लेके जाओ, अभी रुको, अभी लेफ्ट में जाओ, नहीं नहीं यू टर्न मारो, मैं पास घर में भूल के आया हूँ, मेरे को वापस जाना है, घर में पेन भूल के आया हूँ, आईडी कार्ड भूल के आया हूँ, यू टर्न, मतलब जो बोला है वो करना पड़ता है। सर क्या कर रहे हैं आप, बार बार बोल रहे हैं आगे जाओ पीछे जाओ, क्या मैं क्या इधर खेलने को बैठे हो क्या? एक बार तय करो ना क्या चाहिए आपको, ऐसा नहीं बोलता कभी, वो जो बोलता है वो करता है। और मैं बोलेगा ड्राइवर को मेरे के ये यू टर्न लेके जा, मेरा आईडी कार्ड भूल गया मैं आज, बोला क्या सर आप याद क्यों रखते नहीं है, ये क्या समय है बोलने का, मैं तो यहाँ जा चुका ऑलरेडी, अभी टर्न करने को जगह नहीं इधर, वो तुम्हारा काम है, टर्न ले लो और मेरे को आईडी लेके आओ ऊपर जाके। ऐसे हम ड्राइवर को बोल सकते हैं, भगवान को नहीं बोल सकते हैं, वो तो ड्राइवर भगवान ही बैठे हुए हैं, भगवान ड्राइवर बन के और उसको बोल रहे हैं वो। तो वो जो ब्राह्मण है, वो अनपढ़ ब्राह्मण जो है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, लेकिन वो कहता है फोटो जो है ना, फोटो वो देख के मुझे रोना आ रहा है, कितने दयालु है मेरे भगवान, उनको क्या जरूरत है ड्राइवर बनने की, अर्जुन की कुछ जरूरत है क्या उनको, इतने अपने गोलोक धाम से आए नीचे, वो सबके मालिक है, वो सबके स्वामी है, लेकिन एक भक्त पर इतना प्रेम है उसका, उसका ड्राइवर बने हुए हैं। और युद्ध में ऐसा होता था, अभी हमको तो पता नहीं युद्ध कैसे, हम लोग तो छुप छुप के युद्ध करते हैं, अभी बिल्डिंग में छुप के ऊपर से गोली मारते हैं, ये युद्ध बोलते हैं आजकल का, उस टाइम पे 1-to-1 फाइट करते थे, सामने सामने सेना आके लड़ते थे, उसमें इतना शोर, इतना हाथी का, घोड़े का, इसका आवाज होता था, तो उसमें क्या करते थे, ये राइट में ले, लेफ्ट में ले, बोलने का चांस नहीं था उसके अंदर, उसके अंदर केवल लात मारना होता है, बीच में लात मारा पीठ पे तो स्ट्रेट जाने का, पीठ के राइट में लात मारा तो राइट जाने का, पीठ के लेफ्ट लेफ्ट पे लेफ्ट पैर से लात मारा तो लेफ्ट जाने का, यही नियम हुआ करता था। इसका मतलब अपने भक्त के लिए भगवान ने उसकी लात भी खाई, क्योंकि इतना शोर में, हाथी के चिल्ला में और वो घोड़े के आवाज के अंदर, वो मरने वाले लोगों के आवाज के, गर्जना करने वाले के आवाज में किसको सुनाई पड़ेगा, राइट लो लेफ्ट लो, तो वो रो रहा है, देखिए कितने मेरे भगवान दयालु है, देखो कितने दयालु हैं, कितने दयालु है भगवान, जो एक भक्त के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसके प्रेम के कारण उसके रात भी खाने को तैयार है, और खाली तैयार नहीं है, खाया भी है। तो भगवान ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, कि तुमको गीता का सही ज्ञान है, तुम सही समझ सको गीता का सार क्या है, तुम नहीं पढ़े हो, लेकिन फिर भी तुमको गीता का अंदर सार क्या है ये समझ में आया है। तो ये स्टोरी मैंने क्यों बताई आपको, आप लोग मुझे, बहुत लोग सोचते होंगे मन में ये कथा सुनते हुए कि मुझे तो नहीं आता है, समझ में नहीं आएगा मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझने की इच्छा है क्या पहले वो देख लो। हाँ मैं बहुत नंबर वन का अनपढ़ हूँ और कभी स्कूल नहीं गया, कभी कोई ABCD लिखा नहीं, ठीक है, मन को पूछो खाली समझने की इच्छा है क्या आपको, अगर उत्तर हाँ है तो उस हाँ उत्तर को क्या करना है वो भगवान देख लेंगे, आपको बराबर तरीका बताएंगे कैसे समझना है आपको। लेकिन कोई MBBS है, कोई PhD है, लेकिन मन में क्या बोलता है, मुझे नहीं पढ़ना है इसको, तो कैसे समझ में आएगा उसको, तो डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है। मैं बोलेगा मेरे को ड्राइविंग नहीं आता, पर रास्ते पर एक्सीडेंट में डर लगता है बहुत, आप बोलेंगे नहीं नहीं ड्राइविंग सीखना है मुझे, तो ड्राइविंग किसको आएगा, मुझे नहीं आएगा, आपको आएगा, क्योंकि आपको उसको पढ़ने की सीखने की इच्छा है इसलिए आपको आएगा, जिसको नहीं इच्छा है नहीं आएगा, जिसको इच्छा है वो अनपढ़ होगा तो भी आएगा उसको, वैसे ही ये है। क्योंकि ये, अब मैं डॉक्टर हूँ और आप और कुछ हो तो मेरा काम आप नहीं कर सकते, आपका काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन आध्यात्मिक विषय में ऐसा नहीं होता है, जो भी है वो सब कुछ समझ सकता है, इच्छा होनी चाहिए खाली, क्योंकि हम सब लोग आत्मा हैं और आत्मा भगवान का अंश है, और भगवान का दिया हुआ ज्ञान समझने की शक्ति भगवान ने आत्मा में दी हुई है, इच्छा होनी चाहिए, बहाना नहीं होना चाहिए, इच्छा होगी तो आपको समझ में आएगा। और बार बार दोहराता हूँ, ये जीवन ये ज्ञान समझने के लिए दिया है। साथ में परिवार होता रहेगा, बच्चे होंगे, शादी होगी, पैसा आएगा, नौकरी करेंगे, सब कुछ कर्तव्य करेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, लेकिन ये सारे झंझट के बीच में आपको सीखना है और समझना है कि ये जीवन किसके लिए दिया गया है, इसका उपदेश हमारे लिए क्या है। और कीमत कितनी है उसकी? केवल 100 रुपये। आजकल ना ऐसा सब्जी खरीदते खरीदते जेब में हाथ डालते ना तो ऐसा 100 का नोट गिर जाता है कभी कभी, समझ में नहीं आता है किधर गिर गया हूँ। और 100 रुपये में क्या होता है आजकल? एक परिवार को लेकर नाश्ता करने गए, 100 रुपये में नाश्ता होता है क्या? नहीं होता है। वो केवल 100 रुपये के अंदर ये पूरा किताब मिल रहा है 700 श्लोक का, तात्पर्य के साथ आपको जो चाहिए उस भाषा के अंदर, यानी कि नॉलेज उसका फ्री है, खाली पेपर का कॉस्ट है, वो नॉलेज का कॉस्ट नहीं है। भगवान ने जो दिया हुआ है वो संभाल के आपके तरफ पहुंचा दिया है उसको, आपकी भाषा में, तो उसका कॉस्ट नहीं है। और आज की तारीख में इतना बड़ा किताब हार्ड बाउंड कम से कम 400-500 रुपये का मिलता है मार्केट में, चाहे वो फालतू स्टोरी का हो, फिल्म स्टोरी का हो या कुछ भी का हो, ऐसा बुक रहेगा तो उसको उतना कॉस्ट देना पड़ता है आपको। लेकिन मंदिर के लोग सेवा के कारण, सेवा के भाव से उसको देते रहते हैं। एक कृष्ण नाम की किताब है, उसमें 90 कहानी है कृष्ण की, इतनी बड़ी किताब है, इतनी मोटी, उतनी मोटी किताब मार्केट में 800 रुपये के कम नहीं मिलती है। कोई भी विषय, उस कोई विषय हो, पॉलिटिक्स हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, कादंबरी हो, 800 रुपये की होती है इतनी बड़ी किताब। उतनी बड़ी किताब केवल 150 रुपये में मिलती है इस महीने में। 90 कहानी है, दशम स्कंद पूरा उसमें उतार दिया गया है। क्यों कर रहे हैं सब भक्त लोग ऐसे? नुकसान भी करके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जीव के कल्याण के लिए ये सब ज्ञान आवश्यक है, इसलिए उसको बिजनेस के रूप में नहीं करना चाहिए। लोग कल्याण के हेतु जितना सस्ता हो सके, जितना लोगों तक पहुंचा सके उतना पहुंचाना चाहिए। आप बोलेंगे हर साल तो गीता बेचते हो आप, कितना गीता बेचोगे आप? हर व्यक्ति के पास पहुंच गया क्या? नहीं पहुंच गया, तभी तक काम बाकी है। हर व्यक्ति जो इंसान है उसके पास में गीता पहुंच गया क्या? नहीं पहुंचा ना, तो बांटना का काम बाकी है हर साल में और बाकी है। अरे मेरा रोड के अंदर हर घर में पहुंचा है क्या? नहीं पहुंचा है, तो आपका काम बाकी है, अभी आप भी कर सकते हैं। और उसको तो हम भी उनमें से एक है कि हमारे पास भी अब तक आया नहीं है, आया है तो पड़ा नहीं है, है ना, रखा है उधर भगवान के मंदिर के अंदर, लाल कपड़ा बांधकर, गांठ बांधकर, रोज हल्दी कुमकुम फूल तुलसी उसमें डालते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है मालूम नहीं है। और कोई मरने को आएगा तो उसको सर पे लगाते हैं, बस इतना जरूर करते हैं, या कोई कोर्ट में गए तो उसको हाथ रखाते हैं इसके ऊपर। गीता का वेल उसके लिए नहीं है, वो खोल के पढ़ने के लिए है। हाँ नहीं समझ में आता तो हमारे पास एक माता जी काम करती थी पहले, अभी भी अनपढ़ है वो, और वो हमारे काउंसलिंग ग्रुप में रहती थी, और हमारे काउंसलिंग ग्रुप में गीता पर एग्जाम होती थी, तो वो तो बोल सकती थी ना, प्रभु जी मैं तो पढ़ सकती नहीं, मैं क्या एग्जाम दूंगी। लेकिन वो दूसरे भक्त को घर पे लेके जाकर उससे सुनती थी और ओरल एग्जाम देती थी, तोंडी परीक्षा। हाँ कौन थी वो मालूम है आपको? बिजोली। हाँ आज भी वो अनपढ़ी है, अंगूठा छाप है, लेकिन ये मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो मेरे ग्रुप में थी वो, दूसरे भक्त से जो पढ़ी, आप भी थे हमारे ग्रुप में उस समय, इन लोगों से पढ़ती थी वो, समझती थी, और मैं उसका एग्जाम रिटर्न नहीं लेता नहीं था, उसका बाजू में बैठकर मुख से एग्जाम लेता था प्रश्न उत्तर। कितनी गर्व की बात है देखो आप, और हम सब लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको इसमें इंटरेस्ट है। तो भगवान हर व्यक्ति को शक्ति देते हैं, आपको समझना है तो शक्ति दे देते हैं। मूर्ख व्यक्ति भी गीता का पंडित बन सकता है, दुनिया की तरह से मूर्ख रहेगा वो, भगवान उसको बुद्धि देंगे उसका ज्ञान समझने के लिए। इसलिए आपका समय व्यर्थ मत गवाओ, मौका जो मिला है, अवसर आपके हाथ में जो चांस मिला है उसको खोना मत आप। अगर आप अपने आप को इंसान समझते हो तो इसको पढ़ो आप, और खास करके ये महीने में अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, खास करके ये महीने में किसी दूसरे को दोगे ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपके घर में किसी का बर्थडे होगा, किसी के मैरिज होगा, किसी का एंगेजमेंट होगा, किसी का फलाना होगा, किसी का दुकान खुलेगा, किसी का और कुछ उद्घाटन होगा, उसको और कोई फालतू वस्तु भेंट मत देना, उसको भगवद गीता देना। मेरी बेटी की शादी हुई तो मैंने सारे रिश्तेदारों को भगवद गीता दिया, शादी के बाद मुझे कितने फोन आए, थैंक यू वेरी मच, आपने कितना सोच समझ के गिफ्ट दिया हमको। नहीं तो हम लोग क्या है, वाटी देंगे, कोई चमचा देंगे, कोई और कुछ देंगे, कोई घंटी देंगे, कुछ देंगे, हाँ कुछ ना कुछ देना है ना, अभी घर के जो मान सम्मान वाले रिश्तेदार हैं, कुछ ना कुछ देना पड़ता है सोच समझ के, क्या देंगे, एक दिमाग में तकलीफ होती है, क्या देना है क्या देना है, बजट क्या है तुम्हारा। अभी मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ दिल्ली कुछ दिन के बाद में, किसी का 7वें महीने का प्रेगनेंसी का प्रोग्राम है, तो मैंने कहा 25 गीता कम से कम आपको लोगों को देना है, जितने लोग आएंगे गर्भवती महिला के हाथ से आपको गीता देना है, और हम बताएंगे भी, खाली वो रखने के लिए शोकेस के लिए नहीं दिया है, उसको पढ़ना भी है आपको। और वो कैसा है कि वो गिफ्ट कभी समाप्त तो नहीं होगा, फल देंगे तो खा के समाप्त हो जाएंगे, जूस देंगे तो भी समाप्त हो जाएगा, और कुछ देंगे तो भी समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त तो नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा, तुम्हारा पोता भी पढ़ सकता है उसको, ऐसा गिफ्ट देना चाहिए। हम लोग लोगों को बताते हैं आप साल भर के लिए गीता अभी डिस्काउंट में खरीद के रखो, और जितना शादी आएगा, जितना एंगेजमेंट, जितना नामकरण विधि, जितना उपनयन विधि, जितना क्या क्या आएगा तुम्हारा, किसको किसको देना है आपको, घर का उद्घाटन है, किसी का गृह प्रवेश है, क्या है, सबको दे दो, यही एक देने लायक चीज। हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, मेरे पास भगवत गीता से अधिक महत्वपूर्ण, अधिक कीमती वस्तु आपके पास देने के लिए नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग बेटर देन दिस टू गिव यू, ऐसा उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री को बोला था। एक प्रधानमंत्री को ऐसा बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, आज तक किसी ने बोला नहीं है, 80-70 ईयर्स हो गया अभी इंडिया का इंडिपेंडेंस होके, कोई इंडिया का प्रधानमंत्री, हिंदू धर्म का राज्य का प्रधानमंत्री बोला, इतना हिम्मत नहीं किया आज तक बोलने का, और दिया नहीं किसी ने, और जापान के प्रधानमंत्री को भगवद्गीता भेंट दिया, इतना डिलक्स कॉपी, इतना बड़ा, और क्या बताया कि इससे बढ़कर देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और ना किसी के पास है, ये सबसे बेस्ट वस्तु आपको दे रहा हूं मैं। और मैं भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री को ये बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो बिना बोले भी ये है वैसी चीज, अगर प्रधानमंत्री वो वैसे बोलते भी नहीं थे और देते भी नहीं थे तो भी ये बात सच्ची सच है, ये बात गलत नहीं होती, उन्होंने बोलने के बाद कीमत बढ़ गई, उसका वजन बढ़ गया उसका, क्योंकि बड़ा आदमी बोल रहा है, लेकिन सत्य तो वो था पहले से ही कि इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, इससे बढ़कर एक जीव दूसरे जीव को और कुछ दे नहीं सकता है इससे कीमती, लेकिन हमको भी उसको समझने के लिए भी योग्य बनना चाहिए। आप लोग भक्ति विधान में आए हो भगवान के दया से, कौन सा ऐसा अस्पताल है इसमें ये बात की जाती है, बताओ, काम करो पकड़ लो जाओ घर पे, कौन सी जगह पर बताया जाता है कि आपके जीवन में ये जरूरी है, ये सुनो, ये उपलब्ध किया गया है, आपके पास में है, डिस्काउंट में है, ले लो, समझाने के लिए क्लासेस भी कर सकते हैं, आपको क्या करना है बताओ, ये जीवन का इंपॉर्टेंट लक्ष्य है, कौन बताता है, किसको आज की पड़ी है बताओ, हु केयर्स फॉर होम, कौन किसकी परवाह करता है आजकल। लेकिन ये भी हमारा भाग्य है कि हम लोग ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर इस चीज को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, इसमें गाइडेंस भी अवेलेबल है, आप सीख भी सकते हो, समझ सकते हो उसको, इस पर कोर्सेस अवेलेबल है, आपकी भाषा में अवेलेबल है कोर्सेस, 6 दिन के लेक्चर अवेलेबल है भगवद गीता को समझने के लिए, मराठी में, हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में, आपको कौन सी भाषा समझना है आप बताओ, लेकिन लाभ लो इसका। दुनिया में जन्म लेने के बाद में पिछले जन्म के अच्छे कर्म के द्वारा ऐसे मौके जीव को मिलते हैं, ये ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं है कि बाय द वे आप लोग यहां पर आ गए, बाय द वे आपका ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, बिना पिछले जन्म के पुण्य के ये सब मौके नहीं मिलते किसी को, आप लोगों ने पहले से ही अच्छे कर्म किए हैं इसलिए आप एक जगह ऐसे इकट्ठा हो गए हो, इसमें आपको ये सारी सुविधाएं भगवान की तरफ से मिल रही है, जिस जगह पर कोई पाप नहीं है होता है, जिस जगह पर कोई चीटिंग नहीं होता है, जिस जगह पर भगवान के नाम ले जाता है, जिस जगह पर भगवान का प्रसाद ही केवल मिलता है, ना मांस होता है, ना हत्या होती है, ना चीटिंग होता है, ऐसी जगह पर काम करने को मिलना भी बड़ी भाग्य की बात है। सत्यवादी लोग, सत्यवचनी लोग काम करते हैं जहां पर कोई चीटिंग नहीं होता है, प्रामाणिकता से इलाज किया जाता है, लोगों को सांत्वना देते हैं, यात्रा होती है, कोई हॉस्पिटल है तो मुझे बताओ, मुझे वहां नौकरी करने को मिलेगा तो जाऊंगा मैं ऐसा अस्पताल दुनिया में है क्या जिसमें से जगन्नाथपुरी, वृंदावन धाम, मायापुर, अधिक मास की यात्रा जाती है, ऐसा होता है क्या कभी? हम लोग उस भाग्य के अधिकारी है इसलिए हम लोग यहां बैठे हुए हैं। अगर मैं और कहीं नौकरी करता और वहां बोलता वहां के डायरेक्टर को, सर मैं यात्रा देने में बहुत एक्सपर्ट हूं, यात्रा निकालू क्या? बोलो नौकरी करना है क्या, जाना है हाँ सिंपल। अभी आईसीयू में कोई मर रहा है तो लोग बाहर के अस्पताल में जाके हिंदुजा में बोलेंगे, अरे हमारा एक पंडित आएगा, वो जरा पूजन करना है, उसको पूजा करने, बोले यहाँ पर कुछ नहीं होता है, बाहर बैठो। नहीं सर, बहुत बड़े पंडित जी दूर से आए, गया थे, आए, उधर यूपी से आए हैं, बोला आने दो उनको बाहर बैठो, कुछ एंट्री मिलेगा नहीं, ये अस्पताल में आईसीयू से उसको डिस्चार्ज करवा के डिलक्स रूम में लेके जाएगा, वहां पर 50 लोग बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे, गंगा जल देंगे, कीर्तन करेंगे, कोई बंधन नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। ऐसी जगह पर भी आपको काम करने का मौका मिलना है, बड़ी भाग्य की बात है। भगवान का नाम सुनने को मिलना, ऐसा कहते हैं पिछले जन्म में जितने बहुत सारे पुण्य किए हुए हैं उसी को भगवान का नाम कान में गिरने का भाग्य होता है, उसी को श्रीमद् भागवतम सुनने का, भगवद गीता सुनने का भाग्य मिलता है। तो ऑलरेडी हमारा भाग्य हमने प्राप्त करके ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन आने के बाद में अगर इंटरेस्ट नहीं लिया तो प्रॉब्लम किसका है, भगवान का है कि हमारा है? हमारा ही है। तो इसका लाभ हमको लेना चाहिए, ये परम पुण्य जो आपने कमाया हुआ है उसी का आपको फल मिल रहा है तो लेना चाहिए, अगर नहीं लेंगे तो हमारा ही नुकसान है। भगवान ने आपके कर्मों का आपको फल दिया हुआ है, आपने उसको लिया नहीं तो क्या कर सकते हैं उसको। एक घोड़े को हम लोग प्यासे घोड़े को नदी तक लेके जा सकते हैं, लेकिन पानी तो उसको ही पीना है, हम थोड़ी पी सकते हैं उसके लिए। नदी तक उसको लेके जा सकते हैं, नदी तक उसका मुंह भी लेके जा सकते हैं, लेकिन बाद में मुंह से पानी पीना वो घोड़े का काम है, वो उसको ही पीना है, तुम नहीं पी सकते उसके लिए। जैसे कुछ लोग मजाक से बोलते हैं हमको, प्रभु जी मेरे हिसाब का भी जप कर लो ना आप, अच्छा रहेगा जरा, मैं दो ही करता हूँ, आप 14 कर लो मेरे हिसाब का, आपका 16 और मेरा 14, 30 माला कर लो। मैं करूँगा 30 माला, लेकिन लाभ आपको नहीं होगा उसका, आपको 2 माला का ही लाभ होगा, जो आप करोगे उतना ही लाभ आपको होगा। नहीं आप हमारे लिए पढ़ लो ना गीता प्रभु जी, हम लोग नहीं पढ़ सकते, आप हमारे लिए गीता पढ़ लो। मैं पढ़ूंगा, मुझे बहुत लाभ होगा डबल पढ़ने से, लेकिन आपको 0 टाइम पढ़ने से लाभ नहीं होगा। आपको लाभ होना है तो आपको ही पढ़ना है उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा पवित्र महीना है, इस महीने में भगवान ने अर्जुन को ये दिव्य उपदेश सुनाया और आपको भी वो उपदेश उपलब्ध है। हम लोग एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, बार बार, हजार बार, लाखों बार कहते रहेंगे कि आप इसको स्वीकार करो और आपके जीवन को धन्य करो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चन?